ओम शांति, गुड मॉर्निंग। बहुत खुशी की बात है आज हमारे बीच कर्मों के सिद्धांत को लेकर के आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी जी पधारी हैं। हम करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में जो बैलेंस सिखाया जाते हैं उनका आप एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आपका जीवन एक आदर्श किस प्रकार बन गया है। 22 साल से आप इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं और इस समय ब्रह्मा कुमारीज में राजयुग टीचर के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ में आप स्पोक्स पर्सन है मल्टीमीडिया। आपने मास कम्युनिकेशंस में एमएससी किया है और मास कम्युनिकेशंस का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है। मैं संक्षेप में थोड़ा सा ही बताऊंगी। आपने इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट में एज ऑफिसर और उसके बाद एज कंसल्टेंट अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। कितने ही आपने स्पिरिचुअल लेक्चर्स और टॉक्स डिलीवर किए हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स की मेरे पास इस समय लिस्ट है और इसके साथ ही आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दिल्ली में एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे मेडिकल पैरामेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ को ट्रेन किया है काउंसलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में। इस तरह से आपने बहुत सारे मेडिकल वर्ग में भी अच्छी सेवाएं दी हैं। साथ में आप न्यूज रिपोर्टर रही हैं जी न्यूज में, दैनिक भास्कर में आप जर्नलिस्ट रही हैं, ऑल इंडिया रेडियो में आप प्रोग्राम प्रेजेंटर रह चुकी हैं, आपने स्क्रिप्ट राइटर की भूमिका निभाई है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रोडक्शन सेंटर में खासकर ज्ञानवाणी, और एज सब एडिटर आप ब्राइट हाउस पब्लिकेशन में रहे हैं, आप जर्नलिस्ट रहे हैं, कंटेंट राइटर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। और इसी कारण से आपको दैनिक भास्कर के बेस्ट न्यूज स्टोरीज में कई बार सर्वोत्तम अवार्ड दिए गए हैं। साथ में नवकार विमेन ऑर्गेनाइजेशन, लायंस क्लब, लेडीज क्लब, धमतारी, जीसस क्लब, इस तरह से बहुत सारे क्लब्स ने भी आपको इंडिविजुअली ऑनर किया है। तो हमारे सामने एक बहुत ही प्रबुद्ध वक्ता कहें या एक बहुत धारणा युक्त ज्ञानी आत्मा कहें आज आपके साथ शेयर करने जा रही हैं। टॉपिक आप सबको पता ही है, तो आइए कर्म को जाने, भाग्य के मर्म को जाने, स्वलक्ष्य स्वधर्म को जाने, बच सके मिटा सके विकर्म को जाने। आदरणीय अदिति दीदी जी के द्वारा ओम शांति। सभी भाई बहने एक बार प्यार से, एक होता है मुख से बोलना और एक होता है दिल से प्यार से बोलना, तो सभी मेरे साथ इस ओम शांति के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। करेंगे सभी को बाहर प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि हर पल हम सोच भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, कुछ सुन भी रहे हैं और फिर उस अनुसार हम कुछ कर भी रहे हैं। अक्सर जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न मन में आ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। अक्सर बैठे बैठे हम किसी के साथ चिट चैट करते भी बोल देते हैं कि पता नहीं क्या कारण है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। वो बुरा करता है, उसका तो भला हो रहा है, और मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ, हार्ड वर्क करती हूँ, परंतु मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। पता नहीं भगवान मेरे साथ गलत क्यों कर रहा है। तो अक्सर अपने कर्मों को कोसते रहते हैं, बाहर के दृश्यों को देखकर मन में विकल्प चलाते ही रहते हैं। कर्म तो इस कुरुक्षेत्र पर हम जब से आए हैं कर ही रहे हैं, और बचपन से ये सुनते भी आए हैं कि जो हम करेंगे वो हम भरेंगे। परंतु अक्सर जो होता है हमारे साथ, यानी जो हम भर रहे होते हैं, उसका कसूरवार हम किसको ठहराते हैं? दूसरों को, है ना। एक तरफ कहते हैं कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो जो एक्शन करेगा उसी के पास रिएक्शन होगा ना। परंतु फिर हम बार बार कहते हैं कि मेरी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इसके कारण है, अगर वो ऐसा नहीं करता ना तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो एक है, ये तो अलग अलग हो गई ना। तो कारण क्या है, समझ क्यों नहीं पा रहे समझते हुए भी ना, जानते हुए भी हम एग्जैक्टली ये नहीं समझ पा रहे कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, कंफ्यूजन है। क्योंकि जो हम कह रहे हैं उसको हम लॉजिकली प्रूव कर देते हैं, अपने मन को भी बहला देते हैं और दूसरों को भी प्रूव करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। हम भी कुछ गलत करते हैं ना तो उसको प्रूव कर देते हैं। तो आप सभी तो हैं ही ज्यूरिस्ट विंग के, तो वकालत करना तो हर एक को आता है, ऐसा नहीं है केवल जो प्रोफेशनली होते हैं उनको आता है। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों से भी पूछो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो भी अपनी वकालत करने में बहुत माहिर है ना, और दूसरों का जज भी बनने में बहुत माहिर है। फिर उसने ऐसा किया वो गलत है, और मैंने ऐसा क्यों किया उसकी तो लंबी कतार है ना, क्योंकि ये था ये था ये था और वो तो है ही ऐसा, उसके बन जाते हैं जज और अपने बन जाते हैं वकील। तो संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, या हम जो कर रहे हैं, सारे कर्म फिलॉसफी का गूढ़ रहस्य क्या है, कुछ गहरी बातें, क्योंकि गहराई तो बहुत है जो हर एक को अपने भीतर झांक कर देखनी है। उससे पहले हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी है एक राजा की। पुराने जमाने के अंदर एक राजा था, उसकी चार रानियां थी। अब जैसे कि हर स्टोरी में होता है, तो राजा सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है? छोटी वाली रानी को। तो इस कहानी में भी राजा सबसे ज्यादा अपनी छोटी वाली रानी से प्यार करता है। इतना करता है कि वो जिस टाइम सुबह से लेकर शाम तक जिस टाइम जो डिमांड कर दे उसकी उसी समय पूरा वो कर देता है, बस कह कर देखे। बहुत प्यार करता है उसे। उससे बड़ी वाली को भी प्यार करता है। कैसे करता है कि जब वो कहीं जाता है ना, किसी पार्टी पर जाता है ना किसी मीटिंग में जाता है तो उसको साथ लेके जाता है, और उससे बड़ी वाली रानी उसके पास कभी कभी जाता है ना, कभी बीमार हो जाए, कभी कुछ ऐसा हो कि कोई ओकेजन आ जाता है, फेस्टिवल आ जाता है, तो मिलने जुलने चला जाता है। और बड़ी वाली रानी को हर स्टोरी में क्या होता है उसको तो पूछता ही नहीं है। तो एक बार जो राजा का राज पुरोहित होता है वो उसकी जन्म कुंडली देखकर उसे बताता है कि देखो राजा, तुम्हारा तो टाइम बहुत नजदीक है, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, तुम देख लो कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है वो पूरी कर लो, नहीं तो तुम्हें फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। तो राजा ने कहा कि ऐसे कैसे, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। ने कहा देख लो, तुम्हारी जन्म कुंडली कहती है कि तुम्हारा टाइम हो गया, अब तुम क्या चाहते हो देख लो। राजा ने सोचा, बहुत सोचा, फिर राजपुरोहित को कहा कि देखो मेरी एक ही इच्छा है, मैं राजा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अकेला नहीं जाऊं, मेरे साथ कम से कम एक रानी साथ चलनी चाहिए। तो राजपुरोहित मुस्कुराए और बोला पूछ लो अपनी रानियों से, यहां कितनी रानियां बैठी हैं। तो राजा ने कहा ठीक है पूछ लेता हूं। तो सबसे पहले वो किसके पास जाएगा, छोटी वाले रानी के पास। तो उसको सारी बात बताई, हाल चाल पूछा, और फिर एंड में उससे पूछा कि तुम चलोगी मेरे साथ, तो क्या कहेगी, जाएगी, बहुत प्यार करता था, जाएगी तो साफ मना कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। राजा को शौक लगा कि भाई इसको तो इतना प्यार करता था, है ना, इसको तो चलना चाहिए था ना मेरे साथ। तो उसको शौक तो लगा, परंतु अभी तीन रानियां थी तो उसने सोचा चलो, वो जो दूसरी रानी है जिसको सब जगह साथ लेकर जाता था उससे पूछ लेता हूं। तो उसके पास गया और फिर अपने दिल की बात कही, तो वो रानी क्या कहेगी, जाएगी, जाएगी वो कहती है देखो राजा, मेरी तो बहुत उम्र पड़ी है, तुम चले जाओगे तो मैं देखूंगी दूसरा राजा कर लूंगी। तो राजा को तो जैसे सीने में खंजर लग जाता है, साफ ही बोल दिया, अभी तो वो जिंदा है। तो उसने कहा देखो राजा, ऐसे थोड़ी ना उम्र निकलती है, बहुत कुछ करना है, तो साथी तो चाहिए, पर जैसे कहते ना तू नहीं और सही। तो उसने कहा ठीक है, अब जाना था उसको जिस ऊपर से सेकंड नंबर वाली रानी जिसके पास वो कभी कभी जाता है, तो उसके पास जाता है, उसको भी अपने दिल की बात कहता है और उसे पूछता है कि चलोगी मेरे साथ। वो रानी सोचती है और फिर राजा को कहती है कि देखो राजा, मैं शमशान घाट तक तो चलूंगी तुम्हारे साथ, पर उसके आगे नहीं जाऊंगी। और फिर राजा किसके पास जाएगा, सबसे बड़ी वाली। वैसे तो जाता नहीं था कभी, पर सोचा जाते जाते मिल भी लेते हैं, पूछ भी लेते हैं। तो फिर इन द एंड वो अपनी सबसे बड़ी रानी के पास जाता है, उसको भी दिल की बात सुनाता है, और फिर वो क्या जवाब देगी, जाएगी हाँ, वो हाँ कर देती है। अब इस पूरी कहानी में राजा कौन है, आप सभी एक एक राजा हो, और आप सबकी सबसे छोटी रानी कौन है, आपका ये शरीर, इसको जो चाहिए जब चाहिए, कोई दिक्कत हो जाए रेडी है ना, ठीक तो करना ही है इसे, इसकी जो डिमांड हो, क्या पहनाना है, क्या खिलाना है, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं ना सारा दिन, कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है, तो ये है आपकी सबसे छोटी रानी। जब समय आएगा तो ये जाएगी आपके साथ, ये नहीं जाएगी आपके साथ, उससे बड़ी रानी है हमारी पोस्ट पोजीशन, है ना। तो उसको हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो लेके जाते हैं ना, बताते हैं मैं कौन हूं, विजिटिंग कार्ड लेकर जाते हैं, बताते हैं कि देखो ये मैं हूं। कई बार तो चलते चलते भी, एक दूसरे से बात करते करते भी, नाम कम और पोजीशन ज्यादा याद रहती है ना। तो कितने कॉन्शियस होते हैं ना। अब ऊपर जाना होगा तो आज ये आपकी है, कल किसी और की हो जाएगी। कुर्सी किसी की हुई है? नहीं हुई है, तो वो भी दूसरा कर लेगी, तो ये आपके साथ नहीं जाने वाली। और उससे बड़ी रानी है हमारे रिश्तेदार, नाते, संबंधी, जिनके पास हम कभी कभी जाते हैं, है ना। वो कहां तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे, उसके ऊपर। और सबसे बड़ी रानी जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है, वो कौन है? हाँ, आज का टॉपिक क्या है? वो है हमारे कर्म, है ना, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं। हम कर क्या रहे हैं? सोचते हैं? ऐसा नहीं है जो हम हाथों से कर रहे हैं वही कर्म है। कर्म की बड़ी गहरी गति है, और सबसे सूक्ष्म कर्म है हमारे संकल्प, हम क्या सोचते हैं। सबसे सूक्ष्म कर्म जो हर कर्म की बुनियाद है। हर एक चीज जो मैं सोच रही हूं, बोल रही हूं, सुन रही हूं, हाथों से कर रही हूं, पैरों से जा रही हूं, वो तो है, दिखता है, परंतु कर्म इतने मोटे नहीं है। अगर इतने मोटे होते तो शायद हमें पता चल जाता कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम जो फिजिकली कर रहे हैं उस पर तो फिर भी थोड़ा अटेंशन देते हैं, परंतु हर पल क्या सोच रहे हैं, क्या हम सोच समझ के सोच रहे हैं, क्या हम ध्यान से सोच रहे हैं, या पता ही नहीं है। आधा घंटे पहले क्या सोचा था, कुछ याद है हमें? नहीं, पर ये कर्म है। और जो मैं सोच रही हूं, जो मैं बोल रही हूं, जो मैं सुन रही हूं, उसी प्रमाण मैं कर रही हूं फिजिकली। क्योंकि बीज जब जब हम संकल्प करते हैं तब बो लेते हैं, और जैसे बीज बोते हैं वैसा फल आता है। परंतु क्योंकि बीज पर अटेंशन नहीं है तो फल भी अनसर्टेन है। बीज क्या बोया है वो तो याद नहीं है, तो फल क्या आएगा उसका भी पता नहीं है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, है ना, या फिर हॉरोस्कोप देखते हैं, मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। किया मैंने है, पूछ किसी और से रहे हैं। और जो करते हैं वही भरते हैं, उसको ज्यादा पता है मुझसे कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा है? ऐसा है? ऐसा होता है? अब वो क्या करता है, किसी के पास जाते हैं, अपना भविष्य दिखाते हैं जन्म कुंडली में, वो बता देता है कि भाई तुमने ये किया है, अभी तुम्हें ये करना है, तुम्हारी लाइफ में ये होने वाला है। फिर हम क्या करते हैं? उसी प्रमाण सोचने लगते हैं, और वो जो हमें उपाय बताता है वो कोशिश करते हैं कि हम कर लें। और फिर अगर फिट बैठ गया तब तो बढ़िया, और नहीं फिट बैठा तो फिर कह देते हैं हमारा भाग्य ही ऐसा था या भगवान हमारे साथ नहीं है, है ना? तो ऐसे ही चलने दे या कुछ परिवर्तन होने के मार्जिन है? क्योंकि आज हम सीखने ही आए हैं कि कैसे हमारे सूक्ष्म, हमारे स्थूल कर्म हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं, और ये कर्म कैसे काम करते हैं, बहुत ही सटल तरीके से ये काम कर रहे होते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, तो वो बहुत ही गरीब था। वो चाहता था कि मेरा भाग्य बदल जाए, परंतु वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो कईयों के पास गया, कईयों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, परंतु उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा था। उसने बहुत सारे उपाय भी किए, परंतु भाग्य ऐसा था जो बदलने का नाम नहीं ले रहा था। तो किसी ने उसे कहा कि भाई, तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें दूसरों की दुआएं मिलें, क्योंकि तुम्हारी लाइफ के अंदर दुआओं की कमी है। वो चाहता था दुआएं कमाना, लेकिन उसके बाद भी कमा नहीं पा रहा था, क्योंकि आदत ही नहीं थी कुछ ऐसा करने की जिससे उसका भाग्य बदल जाए। तो उसके बाद किसी ने उसे कहा कि आप उच्चारण अपना सही करो, अपनी मानसिकता सही करो। उसने बहुत ट्राई किया, परंतु थोड़े दिन तक तो चलता था, परंतु फिर वो वहीं आ जाता था जैसा वो करता था। बदल नहीं पाया। क्यों नहीं बदल पाया? उपाय करने के बाद भी बदल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बीज को बदल नहीं पाया। और वो बीज क्या था? हमारी सोच। हमारे पास भी कई लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारी लाइफ नहीं बदल रही है, जैसी ट्रैक पर चल रही है वो बदलती नहीं है। हमें ज्ञान भी है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे, बहुत इंटेलिजेंट लोग है ना, जिनको पता है कि लाइफ में राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, परंतु कुछ ऐसा हो जाता है कि वो गलत काम कर देते हैं। उस समय कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता। अभी कल ही मैं एक लेडी से बात कर रही थी, वो मुझे कहती है मैं अपने बच्चों का ना भला करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का भविष्य बन जाए, मेरे जीवन के अंदर खुशियाँ आ जाएं, मुझे ऐसे बोलती है। लेकिन क्या करूँ, वो कुछ ऐसा बोल देते हैं, वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि मेरे मुख से ना निकल ही जाता है कुछ ना कुछ उनके प्रति। मैं चाहती नहीं हूं, भावना बहुत अच्छी है, परंतु कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती हूं कि वो मेरे साथ करते ही ऐसा है। अब होता यह है कि हमें ज्ञान भी हो जाता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, उसके बाद भी हम गलत कर्म कर देते हैं। अब हम छोटे थे तभी हमें बता दिया गया था वो तीन बंदर, अब वो पांच हो गए हैं। क्या कि बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं बोलो, ऐसे बताया था ना? अभी बुरा नहीं सोचो और बुरा नहीं करो, ये भी ऐड हो गया है। अभी हमें बताया गया था, परंतु क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि जो हम सोचते हैं उसका आधार क्या होता है? जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं। और क्योंकि जो हम देख रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमारी सोच पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। फिर जो हमारी सोच पर कंट्रोल नहीं है, फिर हमारे बोल पर भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं वो हमारी वाचा। फिर हम जो बोल रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं है, फिर जो हम कर रहे हैं उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, फिर जो हम कर रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं है, फिर जो भर रहे हैं उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो क्या जरूरत है हमें? सबसे पहले वो जो हमारे बेसिक चीजें जो हमें बताई गई थी, कि बुरा नहीं, सोचो बुरा नहीं, देखो बुरा नहीं, सुनो बुरा नहीं, बोलो बुरा नहीं, करो, तो ऑटोमेटिकली बुरा नहीं होगा। सिंपल है ना, सिंपल कर्मों की फिलॉसफी है। परंतु ये सिंपलिसिटी कॉम्प्लेक्स क्यों हो गई है? क्योंकि कंट्रोल खत्म हो गया है, कंट्रोल खत्म हो गया। जैसे लाइफ में भी क्या है, जब कोई कंट्रोल खत्म हो जाता है ना, एक्सीडेंट क्यों होते हैं? रूल्स रेगुलेशन बने हैं, जब उनको तोड़ते हैं ना, और जब इंसान गलती कब करता है, जब उसका आपा खो जाता है, वो खुद ही मानता है इस बात को कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया अपने इमोशंस पर। जब कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है, जब खुद पर इंसान रूल नहीं करता है, तो फिर जब गलत, यहां से ही कंट्रोल खत्म हुआ ना, रूल्स रेगुलेशन ब्रेक किए ना, तो सजा तो मिलेगी ना। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सजा ना मिले किसी तरीके से ना, उसको उसके बारे में सोचते रहते हैं। परंतु क्या होता है, उसको हम थोड़ी देर के लिए डिले करेंगे, किस तरीके से पोस्टपोन करेंगे, लेकिन बीज तो वही रहा ना, करने का स्टाइल तो हमारा वही रहा ना, न सुनने पर कंट्रोल रहा, न बोलने पर कंट्रोल रहा, न सोचने पर कंट्रोल रहा, तो वो अनकंट्रोल्ड होने की आदत तो वहीं की वहीं रही। तो यानी गलतियां तो आज अगर आपने किसी तरीके से मैनेज कर लिया, परंतु रोज तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं चाहती हूं कि मैं अपने कर्मों को कंट्रोल करूं, तो अपने पर कंट्रोल करूं, और उससे पहले अपने संकल्पों पर कंट्रोल करूं। चलो दो मिनट के लिए सोचते हैं कि हम क्या सोचते हैं। सोचें, ट्राई करके देखते हैं। अपने पहले कर्म को कंट्रोल करोगे तो आगे आने वाले कंट्रोल अपने आप हो जाएंगे। तो दो मिनट के लिए मन को सब बातों से डिटैच कर लेते हैं। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, जिस पर हर पल मैं कर्म कर रही हूं। महसूस करें इस पंच तत्वों से निर्मित देह में, इन कर्म इंद्रियों के मध्य भ्रुकुटी में एकदम सेंटर में एक ज्योति, मैं आत्मा, करणहार हर पल कुछ ना कुछ देख रही हूं इन आंखों से। सुन रही हूं इन कानों से। बोल रही हूं इस मुख से। कार्य कर रही हूं इन हाथों से। चल रही हूं इन पैरों से। मैं हो, और ये कर्मेंद्रियां मेरे साथी हैं। हम मिलकर इस कर्म क्षेत्र पर बीज बो रहे हैं और जैसा हम बीज बो रहे हैं, मैं जानती हूं उसी अनुरूप अच्छा या बुरा फल मैं भविष्य में प्राप्त करूंगी। इसलिए मैं सोचने से पहले अपनी भावनाओं को चेक करती हूं कि क्या मेरे मन में सभी के प्रति शुभ भावना है। देखने से पहले चेक करती हूं कि मेरा दृष्टिकोण सर्व के प्रति आत्मिक स्नेह सहयोग और गुणग्राही है। बोलने से पहले चेक करती हूं कि मैं जो बोल रही हूं वो एक एक शब्द वरदान है या श्राप है, कटु है या मृदु है। हर कार्य करने से पहले मैं मन में बेहद की भावना, निस्वार्थ भावना चेक कर लेती हूं ताकि मेरे हर कदम में मुझे हर पल प्राप्ति ही प्राप्ति हो। ओम शांति। अब क्या हम ऐसा ही सोचते हैं? हर पल हमारे मन में सामने वाले के प्रति कैसी भावना आती है? अब जैसे वो लेडी मुझे कह रही थी कि मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो जब से पैदा हुई है उनका सेवा करती जा रही हूं, इतना करती हूं, और फिर क्या मिला मुझे? इतना सब कुछ करने के बाद होता है ना, ऐसे मन में आता है, इतना अच्छा किया है ना, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? हम उनको सिखाते हैं, हम उनको समझाते हैं, पर वो हमारी समझते क्यों नहीं है? आता है ना मन में ऐसे, क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है ऐसे? हाँ जी, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। तो अब क्या करें, होने दें? हाँ जी, इस जन्म में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, फिर हम वो करते हैं और फिर क्या होता है? हाँ, इस जन्म में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जो हो गया उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, ये तो हम जानते हैं, जो हमने पहले किया था उसके अनुसार अभी हम भरते हैं ना, अकाउंट चलता रहता है हमारा आत्माओं के साथ। किसी के साथ अच्छा किया था है ना, तो हमारे साथ वो इस जन्म में अभी सबको नॉलेज हो गई है, वो अच्छा ही करेगा, और बुरा किया था बुरा करेगा। तो अब क्या करें? हाँ, अच्छा करें, पर हम कर पाते हैं? कर पाते हैं? क्योंकि जब वो सामने वाला हमारे साथ बुरा करता है तो उस समय कंट्रोल थोड़ी ना होता है, वो एक कंट्रोल वाली बात आ गई ना, है ना, फिर हम भी कुछ बोल देते हैं, निकल ही जाता है मुंह से, है ना, पता, वही मैंने कहा ना, ज्ञान होता है हमें पर पावर नहीं होती है, उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करने की पावर नहीं होती है। कर्मों का ज्ञान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जाना कि अच्छा करना चाहिए और जो हम करते हैं वही हम भरते हैं, परंतु उसके बाद भी हम गलत सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमने कुछ गलत किया नहीं है, और उस कर्म को हम सोचते हैं मैंने शायद कुछ बोला नहीं है या उसके लिए कुछ स्पेसिफिकली कुछ गलत किया नहीं है, परंतु मन में क्या हो रहा होता है, दुआ दे, पर सहज है दुआ देना, निकल जाती है, क्या करें, क्या होता है कि जब कोई इंसान हमारे साथ गलत करता है, समझे, हमारे बच्चे भी हमारा कहना नहीं मानते हैं या हमारे अगेंस्ट कर्म करते हैं या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में और ही गलत सोचने लग जाते हैं, ऐसा होता है, जैसे उन्होंने हमारे साथ किया, और स्पेसिफिकली आज के दुनिया के अंदर क्या होता है, प्रतिशोध की भावनाएं, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तो और भी करूंगा, अब समझो मेरे हाथ में नहीं है परंतु सोच तो लूंगा एटलीस्ट कि मैं इसके साथ ऐसा, और इसके साथ ऐसा होना चाहिए, बदले की भावना, बददुआएं दे देते हैं, देखा इसके साथ हुआ है ना, मेरे साथ ऐसा किया ना, इसके साथ भी ऐसे ही होगा, भगवान बैठा है देख लेगा, आता है मन में, ऑटोमेटिकली आता है ना, है ना, अब ये क्या हुआ, ये अच्छा कर्म किया हमने, अब इससे क्या हुआ, जो पहले का था वो तो था, परंतु ये जो हमने गलत सोचा ये एक और बीज बो दिया, अब हमने गलत सोचा तो उसका फल कौन भोगेगा, हम ही भोगेंगे ना। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, यूजुअली तो हम ये कहते हैं कि उसके कारण या इसके कारण, परंतु एक्चुअली हो किसके कारण हो रहा है, हमारे कारण हो रहा है, क्योंकि हम केवल मोटा कर्म चेक कर रहे हैं, सूक्ष्म कर्म हम चेक नहीं कर रहे हैं, और सूक्ष्म कर्म क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, बच्चे को शिक्षा तो दे रहे हैं परंतु क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम गलत भावनाएं अंदर ही अंदर क्रिएट कर लेते हैं उसके प्रति, सोचने लग जाते हैं उसने ऐसा किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था, है ना, उसके बाद फिर उसको शिक्षा देने लगते हैं, तो क्या किया हमने, पहले उसके प्रति नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए और उसके बाद फिर उसको शिक्षा दी, और हमने सोचा कि हमने तो अच्छा काम किया है, अब एज ए रिजल्ट क्या हुआ, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया हमारे स्टिमुलस का, वैसा नहीं किया जैसे हमने सोचा था, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा जो सबसे पहले सूक्ष्म कर्म था वो गलत हो गया है ना, और उस पर हमारा अटेंशन नहीं था, तो अभी हम इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी भावनाओं को पॉजिटिव रखेंगे, तो इसीलिए कई बार लोग क्या करते हैं, मस्तक की रेखाओं को देखकर आपका भविष्य बताते हैं, तो मस्तक की रेखाएं क्या है, आपकी सोच, अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो आपकी मस्तक की रेखाएं बदल जाती हैं, अगर आपने अच्छा किया तो आपके हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं, परंतु बुनियाद क्या है, ये अब हम इसको नहीं बदलते, हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, जो पंडित जी कहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर कहता है, वो सब करना चाहते हैं, परंतु इसको बीज को बदलना नहीं चाहते हैं, अब बीज नहीं बदलता तो फिर फल भी नहीं बदल पाता, एक बारी क्या हुआ, एक लेडी ना, हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में थे तो वहां पर जहां पर थे, वैसे तो हमारा एलोपैथी था परंतु और भी अल्टरनेटिव थेरेपीज भी कई हॉस्पिटल्स में थी। तो एक लेडी के पास मैं बैठी थी, तो वो बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी थी और उसको फिजिकल नॉलेज भी बहुत अच्छी थी, एक्यूप्रेशर की भी एक्सपर्ट थी। उसके पास एक लेडी आई प्रॉब्लम लेकर अपनी घुटनों के दर्द की, तो वो उसके पास आई और अपनी सारी की सारी बातें बताने लगी कि भाई मुझे इतने टाइम से है और डॉक्टर ने कह दिया कि सर्जरी होगी भाई तुम्हारी। तो उसने कहा कि ठीक है आप सर्जरी करा लो अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है। तो कहती नहीं मैं भी नहीं करा सकती, मेरे जो बच्चे हैं उनके एग्जाम्स हैं, तो एग्जाम्स के बाद कराऊंगी, परंतु टेम्परेरली आप कुछ कर दो मुझे अल्टरनेटिव थेरेपी, ताकि फॉर द टाइम बिंग मुझे रिलीफ आ जाए और मैं घर का काम करूं। तो उसने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में और कोई लेडी नहीं है? तो उसने कहा है, मेरी सासू माँ है। तो उसने कहा वो आपकी हेल्प नहीं कराती? तो उसने कहा, मुंह बना लिया, क्या क्या हुआ, वो बीमार रहती है, वो आपकी हेल्प नहीं करा पाती? कहती कहाँ बीमार रहती है, जब उसकी बेटियां आती है तो उसके हाथ पैर सब चलने लग जाते हैं, है ना, और वैसे वो बैठी रहती है सारा दिन एक पांव पर खड़े होकर, बच्चों का भी मैं करूं, हस्बैंड का भी ये करूं, घर का भी देखूं, सब कुछ मैं ही करूं, तो वो मेरी कोई मदद वदद नहीं करती है। तो एक दिन पहले उसने, वो जो लेडी थी, उसने बताया कि मैंने पढ़ा था कर्म फिलॉसफी के बारे में, कि जो हम करते हैं वो हम भरते हैं। तो और उसने स्पेसिफिकली विष्णु पुराण पढ़ी थी और उसमें लिखा था एक कर्म जो हम अक्सर कर देते हैं, निंदा, किसी की बुराई। तो वो बार बार अपनी सासू माँ की बुराई, सासू पुराण शुरू हो गया उसका, और वो करती रही, वो ये करती है, वो ये करती है, ये करती है। तो उसने उसे बताया कि मैंने ऐसे पढ़ा है कि आप यदि कुछ करते हो, यानी बुराई करते हो किसी की, तो उसकी सजा आपको मिलती है, तो ऐसा लिखा है, तो आप एक काम करो, उसकी बुराई करना बंद कर दो आज से। तो उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकती। कहते आप कुछ और बता दो, ये काम नहीं होगा, क्योंकि वो इतना मेरे साथ बुरा करती है बैठे बैठे, उसको देख देख कर ही मुझे कुछ कुछ होता रहता है, ये काम नहीं होगा मुझसे, आप कुछ और बताओ। तो उसने कहा ठीक है, वो उसे मैग्नेटिक थेरेपी, एक्यूप्रेशर देती रही, काफी दिन तक चलता रहा। एक दिन वो आई और कहा कि आपने कल क्या थेरेपी दी थी, आज तो मुझे पूरा दर्द ही नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप आज वही थेरेपी दो। तो उसने कहा कि मैं जो रोज देती हूं थेरेपी वही दी थी, मैंने कुछ नया नहीं किया आपके साथ। तो उसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो उसने कहा अच्छा ये बताओ कल पूरे दिन में आपके साथ क्या हुआ। उसने अपने पूरा दिन का पूरा बताया और साथ में एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बताया कि कल मैंने अपने घर में एक डिश बनाई थी, सबने पूछा कि ये तुमने कहां से सीखी। तो उसने कहा ये मैं बचपन से, तो घर में मम्मी पापा को तो नहीं आती थी ये वाली डिश, मेरे घर में कोई नहीं बनाता था, परंतु ये मैंने ससुराल में आके अपनी सासू माँ से सीखी है। तो उसने कहा देखो तुमने कल उसकी स्तुति करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे साथ ये अच्छा हुआ है। अब उसे एक बारी ये फीलिंग आ गई है ना, एक बारी अनुभव हो जाए ना कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तो उसके बाद इंसान को लगता है कि करके देखना चाहिए, क्योंकि जब तक होता नहीं है ना तब तक इंसान करता ही नहीं है। और उस दिन के बाद उसने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, और आप मानोगे 6 महीने के बाद एक ऐसी स्टेज हो गई थी, डॉक्टर ने उसे यह कहा कि अब आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है कि जो हम करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, उस कर्म की सजा हम तन द्वारा तन मन धन संबंध, जो हम करते हैं वो इन चारों द्वारा भोगते हैं। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तन के साथ मन के साथ, है ना, फिजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, धन ऊपर नीचे हो जाना, है ना, संबंधों में टकराव हो जाना, ये सब हो रहा है, है ना। परंतु होता जा रहा है हमारे साथ, परंतु इसका गुहे कारण क्या है, चेक करने की बात है। हमारी सोच, उनके प्रति हमारी सोच, जिस दिन वो बदल जाती है उस दिन ये, और ये एक चीज नहीं है, वो तो तन का रोग कटा, परंतु कई लोगों के जो मानसिक रोग तो हम जानते ही हैं, जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अब उसने तो एक बार ही किया है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सबसे सूक्ष्म कर्म है, फिर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं उस कर्म का, किसी ने आपकी बुराई कर दी, आपको पता चल गया भाई इसने मेरे साथ ऐसा कुछ गलत कर दिया, अब हम क्या करते हैं, हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं, नहीं। अच्छे के लिए अच्छा सोचना ये तो एक बात हो गई, तो उसने मेरी अच्छाई करी और मैं भी अच्छा सोचने लग गई, परंतु कोई आपकी बुराई कर रहा है उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते। हमें लगता है कि ये तो होगा ही ना, परंतु जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि जो वो कर रहा है वो भर रहा है, और जो मैं कर रही हूं वो मैं भर रही हूं, है ना। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो उसके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, स्वार्थी है ना इंसान, तो यही स्वार्थ रखो कि अगर मैं अच्छा सोच रहा हूं तो मैं उसके लिए अच्छा नहीं सोच रहा हूं, अपने लिए अच्छा सोच रहा हूं। कई बार हम सोचते हैं कि कोई गलत कर रहा है, उसको माफी देकर हम उस पर एहसान कर रहे हैं, परंतु उस पर एहसान नहीं करते। हम किस पर एहसान करते हैं, खुद पर एहसान करते हैं, क्योंकि जब आप माफ कर देते हो किसी को तो आपके, कम से कम आपके बुरे कर्म होने बंद हो जाते हैं, और बुरे कर्म होना बंद हो जाते हैं तो फिर उसका फल मिलना भी बंद हो जाता है। एक बार एक लेडी आई, सिमिलर केस, वो तो फिजिकल प्रॉब्लम थी, ये रिलेशंस की प्रॉब्लम थी। उसने कहा मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ किया, परंतु जब उसकी शादी हो गई तो फिर क्या किया, उसने अपनी वाइफ के साथ चला गया, और फिर मेरी और मेरे बेटे की बिल्कुल नहीं बनती, मैं चाहती हूं उसके साथ मनाना, परंतु रिलेशंस ऐसे खराब हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, ना उसकी वाइफ ना वो, दोनों में से कोई भी मुझसे मिलता नहीं है, मैं क्या करूं। अब क्या करें, समझ ही नहीं आया। तो वो क्या करती थी, रोज क्या होता है, लेडीज जो है ना उनका ग्रुप होता है ना, तो शाम के टाइम अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलती थी, और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने घर की ऐसी ऐसी बातें, सब लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं, तो वो भी अपनी घर की बातें बताती थी, मेरा बेटा ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। तो ये निंदा जाने अनजाने, पता नहीं होता हमें, पर हम कर देते हैं। तो ये रोज करती थी, और हम भी ये सब अक्सर कर देते हैं, कभी हमारे मन में, कभी व्हाट्सएप से, कभी फोन पे। तो एक बार किसी ने उसे ये गुहे राज बताया, क्योंकि हम ऐसे मिलते रहते हैं तो उनको ये थेरेपी बताते हैं और कहते हैं ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो ना, जैसे आपको मेडिसिन देता है या कोई थेरेपी होती है, ट्राई करके देखो। तो उसको भी बताया कि आप ट्राई करके देखो कि आज से अपने बेटे और बहू के प्रति अच्छा बोलना शुरू कर दो, अब दो दिन ट्राई करके देखो, है ना। तो थोड़े दिन कंट्रोल किया उसने कहा, क्योंकि भावना थी तो उसने किया, और आप मानोगे दो दिन के बाद उसके बेटे का फोन आता है, और वो अपनी माँ के बारे में पूछता है कि मम्मी आप कैसे हो। तो वो खुद खुद हैरान हो गई कि जिस दिन से उसने अच्छा सोचना शुरू किया उस दिन से उसके बेटे और बहू का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। क्योंकि वही होता है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही थॉट्स उसके चलने शुरू हो जाते हैं, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, अब मेरा एक्शन अच्छा है तो रिएक्शन भी अच्छा शुरू हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो खाई जो है वो कितनी गहरी है। अगर खाई पुरानी है और गहरी ज्यादा है तो टाइम ज्यादा ले लेती है, और अगर ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो जल्दी से हील हो जाता है रिलेशन। अब इस पूरे प्रोसीजर में कर्म किसने किया? जब जब हम नेगेटिव सोचते रहे, अब ये क्या होता है दुनिया में भी कहते हैं, हमारी लाइफ के अंदर पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये पतन की जड़ है। हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा क्या हो रहा है उसका मेन कारण क्या है, है ना, हम हैं। परंतु हम हर पल क्या कर रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, उनके अनुसार कर्म कर रहे हैं, है ना, यही कर रहे हैं ना हम। हमारा हर एक्शन डिपेंडेंट है, दूसरों के कर्म पर आधारित है, इसीलिए हमें पता ही नहीं है हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। तो अगर हमें पता होगा कि हम क्या सोच रहे हैं उस पर अटेंशन होगा, हम क्या बोल रहे हैं उस पर अटेंशन होगा, है ना, हम क्या कर रहे हैं उस पर अटेंशन होगा, हम क्या सुन रहे हैं उस पर अटेंशन होगा, तो हमारे साथ क्या होने वाला है उस पर भी हमारा पूरा कंट्रोल होगा। आप जो चाहते हो वो हो जाएगा, परंतु उसके लिए अपनी चाहत को, कहां आ रही है चाहतें, इच्छाएं कहां उत्पन्न आ रही है, मन में, अपने संकल्पों को पॉजिटिव तो रखना पड़ेगा ना, और पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो पावरफुल नहीं बनेंगे, और पावरफुल नहीं है वीक है। वीक क्या है, गलत सोच रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोचना ये वीक है ना, ये स्ट्रांग थॉट है। अपने लिए भी गलत सोचना वीक थॉट है, स्ट्रांग थॉट है, वीक थॉट है ना, है ना। फिर क्या होता है, जैसे समझो मेरा हाथ कमजोर है तो मैं चाहती हूं ये ग्लास उठाना, उठा पाऊंगी, नहीं उठा पाऊंगी। तो ऐसे ही मैं चाहती हूं मेरे साथ अच्छा हो जाए, तो उसके लिए जिस मन से मैं चाहती हूं उस मन को पावरफुल होना पड़ेगा ना। अगर मन कमजोर है, मन में कमजोर थॉट्स आ रहे हैं, है ना, मन में कमजोर थॉट आ रहे हैं, तो फिर मन जो चाहता है वो होगा, नहीं होगा ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो तो उसके लिए हमें कर्म अच्छा करना पड़ेगा, और उस कर्म के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद यानी मन को पावरफुल बनाना पड़ेगा। और इसीलिए गीता में क्या कहा है कि हमें क्या बनना है, कर्म योगी बनना है। कर्म योगी क्या है, कर्म से योग लगाना, कई बार सोचते हैं कि पूरे कर्म कॉन्शियस होकर कर्म करना, इसी को कर्म योग कहते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तव में योग में रहकर कर्म करना, इसको कर्म की योग कहते हैं। जब हमारा मन और बुद्धि उस करण करावनहार परमात्मा के साथ जुड़ा होता है और उसकी याद में रहकर हम कर्म करते हैं, तो मन पावरफुल हो जाता है, क्योंकि किसके साथ कनेक्टेड है, सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड है, ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ कनेक्टेड है। तो ये जब माइंड कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि पावर आ गई ना, कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, तो जब ये पावरफुल हो जाता है तो ये अच्छा सोचता है, क्योंकि जिसके साथ कनेक्टेड है वो पावरफुल है, और जब वो अच्छा सोचता है सबके लिए तो फिर मन में भावनाएं अच्छी हैं, है ना, तो दृष्टिकोण बदलता है। हम सामने वाले दृश्य कहीं पर सोचते कंट्रोल नहीं है ना हमारा, गलत दिख रहा है। नजारों पर आपका कंट्रोल है? नहीं है। पर नजरिए पर कंट्रोल है? नजारों को मैं नहीं बदल सकती, परंतु नजरिए को बदल सकती हूं ना। कहते हैं ना कई लोग, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है और किसी को कीचड़ में भी कमल नजर आता है। तो आपके सामने भी जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो व्यक्ति आते हैं, उनके अंदर भी कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। हम उन्हें किस नजरिए से देख रहे हैं ना? अगर हम उनकी बुराइयां देखते जा रहे हैं, अपने बच्चों की या अपने साथ जो भी लोग हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? नजरिया तो नहीं बदला ना, परंतु उम्मीद क्या करते हैं, नजारे बदल जाएं, है ना। दृष्टिकोण नहीं बदलना चाहते, परंतु हम चाहते दृश्य ही बदल जाएं। बदल सकते हैं? बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, क्योंकि वो दूसरी चीज है ना। हम किसको बदल सकते हैं? स्वचिंतन करके, स्वदर्शन करके, है ना, अपने आप को बदल सकते हैं। बदल सकते हैं? चलो एक बार देखते हैं हम बदल सकते हैं, है ना। सब कर सकते हैं, है ना। तो देखो, अब हम सीखेंगे कि कैसे हम कर्म योगी बन सकते हैं। अब इससे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके फील्ड में भी आपको काम आएगी, जब हम सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसे हम ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, है ना, सागर मतलब स्रोत है वो उन सब चीजों का, ओशन ऑफ प्योरिटी, पवित्रता का सागर है, तो उससे क्या होता है, जब मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा जिसे करण करावनहार कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाती हूं, जिसे हम राजयोग जब करते हैं, तो क्या होता है, वो पावर मन को पावरफुल, बुद्धि को पावरफुल, संस्कारों को पावरफुल बनाती है, क्योंकि पवित्र बनती जाती है हमारी बुद्धि, पवित्र बनते जाते हैं हमारे मन के संकल्प, पवित्र बनते जाते हैं हमारे संस्कार, और फिर उस पवित्रता से, प्योर थॉट से, जब हम कुछ भी करते हैं, देखते हैं, क्योंकि कर्म क्या हो रहे हैं, देखना, सुनना, बोलना, करना, तो कर्म इंद्रियां हमारी और कर्म हमारे प्योर पावरफुल बनते जाते हैं। अब क्योंकि यहां परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है हम तो कमजोर हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु वो तो पावरफुल है ना। अब आपकी इंजन कमजोर है कोई बात नहीं, परंतु उस इंजन को डबल इंजन की गाड़ी बना लो अपने आप को, उसके साथ मिलकर, इसे कहते कर्म योग। तो जब उसके साथ योग लगाकर हम कुछ भी करते हैं, तो वो कर्म ऑटोमेटिकली पावरफुल होने लगते हैं, क्योंकि माइंड के अंदर नेगेटिविटी खत्म होने लगती है उसके साथ से, इसे कहते संग का रंग। तो सबसे अच्छा कर्म हमने क्या किया, उसको याद किया। आपके लिए इसके प्रति उसके प्रति गलत भावना निकल रही है, ये आपकी आदत बन गई है, परंतु उसके प्रति आपकी भावना वो तो गलत नहीं है ना, उसके प्रति तो नेगेटिव थॉट नहीं निकलेगा ना, तो उसके लिए तो अच्छा सोच सकते हैं ना। तो आप बस उसको याद करो, उसकी याद से, ये है सबसे श्रेष्ठ कर्म। जब आप इस कर्म को करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आपके बाकी कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं। तो ये तो कर सकते हैं ना, क्योंकि बाकी चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, यहां ये श्रेष्ठ कर्म करना हम सीखते हैं। तो एक बार हम करके देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण, हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारी सोच बदलती है, हमारी भावनाएं बदलती हैं, बदल सकती हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हम कनेक्ट हो रहे हैं उसका काम ही है परिवर्तन। क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं, दुख हरता, क्या करता है, दुख हरता सुख करता, दुख को खत्म करता है, सुख दे देता है, कंट्रास्ट है। पतित पावन कंट्रास्ट है, वही परिवर्तन करता है, है ना। तो वो सब कुछ चेंज करने की ताकत रखता है, और उसके साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर भी इतनी पावर आ जाती है कि हम अपने संकल्पों को, पहले जो सूक्ष्म संकल्प है उसको बदलते हैं, थॉट्स को बदलते हैं, क्योंकि अब हम उसके नजरिए से सबको देखने लगते हैं, उसके दिए गए ज्ञान के नजरिए से। जो आपको यहां ज्ञान मिला परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान, जो ये कहता है कि संसार के अंदर सभी मनुष्य आत्माएं हैं, है ना, और हर एक आत्मा अपनी अलग अलग जर्नी में है, हर एक के अपने अपने संस्कार हैं, हर एक आत्मा अलग अलग है, अपने अपने स्थान पर सब सही है। अब इस नॉलेज को तो हम यहां जान लेते हैं, पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते, प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, और गलत कर्म कर देते हैं, फिर गलत फल पा लेते हैं, फिर अपने कर्मों को कोसने लगते हैं, है ना, फिर कभी उसको कभी दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं। ये सारा सर्कल क्यों चलता है, क्योंकि हम कमजोर हैं और उस कमजोरी पर हम कोई काम ही नहीं करते हैं। दूसरे बदल जाएं, स्थिति बदल जाए, उस पर काम करते हैं। तो चलो एक छोटी सी ट्राई करते हैं, करके देखें कि उसके साथ, यानी कर्म योग जो हमें सिखाया गया इस कुरुक्षेत्र पर, इस कर्म क्षेत्र पर, कर्म योगी बनकर कैसे कर्म करना है ना, जिसमें हमारा पूरा अटेंशन हमारे कर्म पर होता है, ना कि फल पर होता है। जैसे कहते हैं ना, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, परंतु हम तो ऐसा नहीं करते हैं ना। पहले बुद्धि में फल होता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कर्म करना शुरू करते हैं, है ना। बुरा नहीं है, परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये चेक करें कि हमारे कर्म, यानी सबसे सूक्ष्म कर्म, वो ठीक हैं या गलत हैं। एक बार हम कर्मयोगी होने की प्रैक्टिस करते हैं। तो सभी माइंड को, इंटेलेक्ट को, मन बुद्धि को एकदम डिटैच करेंगे। एकदम दुनिया में चलती बातों से, जीवन में होते उतराव और चढ़ाव से कुछ देर के लिए मन को फ्री कर देते हैं। बहुत सोच सोच कर देख लिया, अपने अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार, जीवन की परिस्थितियों के साथ बहुत लड़ लिया, अब मैं इस कुरुक्षेत्र पर उस करण करावनहार की डायरेक्शन प्रमाण, उसकी शक्ति से कर्म करना प्रारंभ करती हूं। अनुभव करें मस्तक के मध्य कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं चेतन शक्ति, मैं जानते हो क्या सही है क्या गलत है। परंतु चाह कर भी सही कर नहीं पाते हो, अनुभव करें अंतर की इस कमजोरी को, और महसूस करें बिल्कुल मेरे सामने स्वयं करण करावनहार। परम पिता, परमात्मा, ज्योति बिंदु, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियों का स्रोत, ये कह रहा है कि ओ मेरे बच्चे, इस कर्म क्षेत्र पर आप अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा मात पिता सदा तुम्हारे साथ हूं। महसूस करें परम ज्योति से निकलती शक्तिशाली किरणें मेरे भीतर समा रही हैं, मेरे अंतर मन की सब मैल मिटा रही है, मेरी भावनाओं को शुद्ध कर रही है, बुद्धि पर जो पुरानी बातों का बोझ है वो सब स्वयं परमपिता परमात्मा हरते जा रहे हैं और मैं लाइट एकदम हल्की बातों का बोझ लोगों की अलग अलग कर्मों का बोझ मेरे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्यों का बोझ जिम्मेवारियों का बोझ संबंधों का बोझ सब उसे दे दे, हल्के हो जाए एकदम लाइट, और महसूस करें अब इस पवित्र मन से, पवित्र दृष्टिकोण से मैं बिल्कुल वैसी हो गई हूं जैसे मैं बचपन में थी किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, क्लीन क्लियर। महसूस करें अंतर की शक्ति को जो मेरे मन के विचारों को सकारात्मक शुभ बना रही है। मैं समझ गई हूं कि संसार में प्रत्येक मनुष्य आत्मा बहुत अच्छी है, क्योंकि वो उस परमात्मा की बच्ची है। अब मैं उनके बाह्य कर्मों से नहीं, अभी तो उनकी अंतर आत्मा को देखकर उनके प्रति भावनाएं, बोल व कर्मों को प्रकट करती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि प्रत्येक आत्मा जो सोच रही है उसी अनुसार बोल रही है, वैसा ही कर रही है। वो दुखी है तो दुखदाई बोल बोल रही है, दुखदाई कर्म कर रही है, तो मैं उसके दुखदाई कर्मों को देख अपने कर्मों को नहीं बदलती, मैं उस आत्मा के प्रति भी सुख शांति प्रेम की भावना रखती हूं और परमात्मा को यही कहती हूं कि वो भी सुखी हो जाए, अनुभव करें इस नवीन दृष्टिकोण को जो मेरे शब्दों को सबके प्रति सुखदाई बना रहे हैं, जो मेरे कार्यों को भी मंगलकारी बना रहे हैं। ओम शांति। तो सबसे सूक्ष्म कर्म है हमारे संकल्प, और जब हम कर्म योगी बनकर उस परम पिता परमात्मा की याद में रहकर उससे कनेक्ट होकर कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म कैसा बन जाता है? श्रेष्ठ, सुखदाई, मंगलकारी। और जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल भी वैसा ही पॉजिटिव होने लगता है। तो आज से चेक करेंगे रोज, है ना, जो हो रहा है, जो बाहर है उसको देखने से पहले जो अंदर है उसको चेक करने का हम बार बार अभ्यास करेंगे। जब हम उसको बदलेंगे तो पास्ट में चाहे कुछ भी हो रहा हो परंतु आपके प्रेजेंट के कर्म आपके फ्यूचर को बदल देंगे, और जब फ्यूचर बदलेगा क्योंकि आपका प्रेजेंट बदल गया है तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों श्रेष्ठ हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जो आप आज कर रहे हो वो आपका भूतकाल और फिर जो भविष्य है वो आपका आगे आगे करके वर्तमान और फिर आगे आने वाला भविष्य, वो भी बदल जाएगा। तो यदि हम परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कर्म फिलॉसफी बहुत गहरी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रेजेंट टाइम में क्या कर सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सभी भी अपनी लाइफ के अंदर अपने इस श्रेष्ठ कर्म से अपना आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल बनाएंगे। ओम शांति।